नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम 5 मई से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। नौवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की चालू वित्त वर्ष में 51,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 62 नए जहाज शामिल करने की योजना। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति की चिंताओं और वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच ब्याज दरों को 3.5 से 3.75% पर स्थिर रखा। ईरानी मुद्रा रियाल अमरीकी डॉलर के मुकाबले 18 लाख के रिकॉर्ड निचले स्तर पर। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम 5 से 7 मई तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री लैम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वे बोधगया और मुंबई भी जाएंगे। ये यात्रा भारत वियतनाम रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में इटली के रक्षा मंत्री गुइदो क्रोसेटो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि बैठक के दौरान रक्षा सहयोग से संबंधित कई मुद्दों पर बातचीत होगी। दोनों नेता बदलते सुरक्षा परिदृश्य के संदर्भ में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इटली के रक्षा मंत्री की भारत की ये पहली यात्रा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत चालू वित्त वर्ष में 51,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ 62 जहाजों को शामिल करने पर काम कर रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य के संबंध में कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय समीक्षा बैठक में श्री सोनोवाल ने देश की नौवहन क्षमता को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने 59 पोतों को हासिल करने के लिए भारतीय पोत परिवहन निगम और सरकारी तेल कंपनियों के बीच के संयुक्त उद्यम की भी समीक्षा की। श्री सोनोवाल ने स्पष्ट किया कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने संकेत दिया है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी लंबे समय तक जारी रह सकती है। इस नाकेबंदी पर अमेरिका अब तक $25 अरब से अधिक खर्च कर चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो समझदारी से काम ले। अमेरिका का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की शर्त पर ही युद्ध विराम हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने किसी भी दबाव में बातचीत से इंकार कर दिया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय ने अनुमान व्यक्त किया है कि ईरान का यूरेनियम भंडार इस्फहान में हो सकता है। इससे यूरोप और समूचे एशिया की सरकारें और अधिक चौकस हो गई हैं। ब्यौरा हमारे पश्चिम संवाददाता से।
परिस्थितियां इसलिए और भी गंभीर प्रतीत हो रही हैं कि इसका कोई भी कूटनीतिक समाधान नहीं निकल पा रहा है। अमेरिका का कहना है कि संघर्ष विराम तब तक संभव नहीं है जब तक ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ देता। वहीं ईरान का कहना है कि वो किसी भी तरह के दबाव में नहीं झुकेगा। हालांकि नाकेबंदी के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसका वित्तीय बोझ अमेरिका पर भी पड़ रहा है, जो अब $25 अरब से भी अधिक होने का अनुमान है। इससे ट्रंप प्रशासन पर ये दबाव बढ़ गया है कि वो केवल रणनीतिक दृढ़ता ही नहीं बल्कि ठोस परिणाम भी दिखाए। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर 1.5 घंटे से अधिक की बातचीत हुई है। बातचीत में श्री पुतिन ने श्री ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की और राजनीतिक हिंसा को अस्वीकार्य बताया। दोनों नेताओं ने ईरान और फारस की खाड़ी की स्थिति पर चर्चा की। श्री पुतिन ने युद्ध विराम बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया और संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयासों के प्रति समर्थन व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि यूरोपीय ताकतों के समर्थन के कारण वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की संघर्ष को लंबा खींच रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने सूचित किया है कि भारतीय एयरलाइंस दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने की योजना बना रही हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो कल से दोहा और भारत के बीच अपनी उड़ानें फिर से शुरू करने जा रही हैं। दूतावास ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे उड़ान संबंधी जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क में रहें। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। ये फैसला लगातार जारी महंगाई और बैंक के अध्यक्ष पद से जेरोम पावेल के प्रतीक्षित नेतृत्व परिवर्तन के बीच लिया गया है। एक रिपोर्ट।
फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने ब्याज दर को 3.5-4% के बीच ही बनाए रखने का निर्णय लिया है। बैंक ने कहा कि पश्चिम एशिया के घटनाक्रम के कारण आर्थिक परिदृश्य काफी अनिश्चितता भरा हो गया है और महंगाई बढ़ी हुई है, जिसका एक कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों का बढ़ना है। इस बीच जेरोम पॉवेल ने संकेत दिया है कि वे 15 मई को फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बने रहेंगे। श्री पॉवेल ने कहा कि वे फेडरल रिजर्व भवन के जीर्णोद्धार मामले की निष्पक्ष जांच की प्रतीक्षा करेंगे। श्री पॉवेल वर्ष 2028 तक गवर्नर पद पर बने रह सकते हैं। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
अमेरिका के प्रतिबंधों और प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करने वाली नौसैनिक नाकाबंदी से ईरान की मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है, जो मौजूदा जारी संघर्ष के कारण बढ़ते आर्थिक दबाव को दर्शाती है। ईरानी रियाल अमरीकी डॉलर के मुकाबले लगभग 18 लाख तक कमजोर हो गई है। पिछले साल ये 8,11,000 थी। संघर्ष के शुरुआती हफ्तों में अपेक्षाकृत स्थिरता के बाद अस्थिरता फिर से बढ़ने के बाद ये गिरावट आई है। सीमित व्यापारिक गतिविधियों से शुरू में आर्थिक दबाव का असर कम था, लेकिन अब मुद्रा में फिर से गिरावट शुरू हो गई है, जिससे आयात लागत में वृद्धि के कारण और मुद्रास्फीति की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका ने इस महीने की शुरुआत में होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर ईरानी प्रतिबंधों के बाद नौसैनिक नाकाबंदी लगाकर दबाव बढ़ा दिया है। ब्राजील की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के लिए जॉर्ज मेसियस के नामांकन को अस्वीकार कर दिया है। इसे राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला द सिल्वा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ये पिछले 130 वर्षों में पहला मौका है जब राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति को संसद ने अस्वीकार किया है। श्री मेसियस 2023 से ब्राजील के सॉलिसिटर जनरल और लुला के करीबी कानूनी सलाहकार हैं। उनके पक्ष में केवल 34 वोट पड़े, जबकि विरोध में 42 वोट पड़े। मेसियस को मंजूरी के लिए 41 वोटों की आवश्यकता थी। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला ने आज न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय 9/11 स्मारक गए, जहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर 2001 हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। ये कार्यक्रम अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित शाही जोड़े की 4 दिवसीय यात्रा का हिस्सा था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की 2010 में यात्रा के बाद किसी ब्रिटिश राजा की ये पहली न्यूयॉर्क यात्रा है। आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 244 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कई खबरों से पता चलता है कि यूरोप में तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ये महाद्वीप बाकी दुनिया की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। यूरोपीय जलवायु रिपोर्ट के अनुसार 1980 से यूरोप वैश्विक औसत की तुलना में दोगुनी गति से गर्म हुआ है। वर्ष 2025 में यूरोप को लू, जंगल की आग, समुद्र के बढ़ते तापमान और बर्फ पिघलने जैसी कई स्थितियों का सामना करना पड़ा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम 5 मई से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। नौवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की चालू वित्त वर्ष में 51,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 62 नए जहाज शामिल करने की योजना। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति की चिंताओं और वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच ब्याज दरों को 3.5 से 3.75% पर स्थिर रखा। ईरानी मुद्रा रियाल अमरीकी डॉलर के मुकाबले 18 लाख के रिकॉर्ड निचले स्तर पर। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।